Jema. So, I've been asked to speak on health and healing. Actually, this topic has been covered in a number of ways several times. But still, each time we can approach it in a new way with a new dimension. So, first and foremost, I think we need to remember that healing is not a one-time process. हीलिंग या रोग जिसको हम कहते हैं, रोग वास्तव में हमको ये बताता है कि हमारे यहाँ हमारे शरीर के घर में कोई हिस्सा है जो वल्नरेबल है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम घर में रहते हैं और दीमक लग जाती है किसी पार्ट में, या कोई हिस्सा खुला रहता है, छेद खुला रहता है जिससे कीड़े वगैरह आते हैं, तो केवल इतना काफ़ी नहीं रहता है कि हम उस पार्ट को ट्रीट करें. हमको देखना पड़ता है, कभी कभी पूरी कॉलोनी को ट्रीट करना पड़ता है. दीमक लग जाती है तो यू हैव टू ट्रीट द होल कॉलोनी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो रूट है वो वहां पर बैठा हुआ है. तो उसी प्रकार से जब इलनेस होती है, ठीक वैसे जैसे हमारे जीवन में कोई डिफिकल्टी आती है, तो ये मौका होता है देखने का कि हमारे अंदर कौन सी चीजें जो वल्नरेबल है, कौन सी चीजें जो खुली हुई है बीमारी के प्रति, कौन सा भाग है जो दीमक की तरह, दीमक लगने की तरह बार बार अट्रैक्ट करता है इस तरह की चीज़ों को, कौन सा भाग है जिसके थ्रू वो कीड़े जो नीचे से आते हैं वो आ रहे हैं, कौन सा भाग है जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी सफ़र कर रही है. तो ये सारी चीज़ें एक चिंतन का और चर्चा का विषय होनी चाहिए. इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक चीज़ अपने आप में एक पूरा संसार है. किंतु ये आवश्यक है कि हम टोटेलिटी में देखें किसी भी फिनोमेना ऑफ इलनेस को. तो अभी हम ऐसा नहीं करते हैं, हम आजकल थोड़ा बहुत लोग कहते हैं लाइफस्टाइल का, लेकिन हुआ क्या है कि चूंकि हमारे पास बड़े इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस आ गए हैं, वो इफ़ेक्टिव हैं, तो इस कारण वास्तव में हम फिर से अनकॉन्शियस हो जाते हैं. थोड़ा बहुत दवाई ले ली, ठीक हो गए, दवाई ले ली, ठीक हो गए. और ये भी सच है कि डॉक्टर्स के पास बहुत समय नहीं होता है. तो एक दूसरी सजेशन जो मेरी ये है कि अगर हेल्थ एंड हीलिंग हैज़ टू बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस, तो ऑब्वियसली हमें अपने जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को ध्यान से उसको रीलुक करने की ज़रूरत है. बहुत सरप्राइजिंग है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो तो अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफस्टाइल की वो उतनी सही नहीं, कई बार ओवरडू करते हैं. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10-10 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, और भी ज़्यादा कर रहे हैं, और ज़्यादा कर रहे हैं. उनको ये इंप्रेशन है कि अगर मैं ज़्यादा साइकिलिंग करूँगा, ट्रेडमिल करूँगा, तो इससे मेरा हार्ट ज़्यादा स्वस्थ रहेगा. तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि शरीर के जो कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है. बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं और वो सीधा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चले जाते हैं, और जिसके कारण वो सफ़र करते हैं. आश्रम में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ हर एज ग्रुप के लिए एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है. तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस के अनुसार हमको लाइफस्टाइल समझने की और उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसी ब्लैंक स्पेस है. मैं नहीं जानता हूँ कि किसी आजकल की मेडिकल टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि नहीं, या प्रिवेंटिव मेडिसिन में, लेकिन कम से कम जब हम लोग पढ़ते थे तो हमको लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ध्यान देकर के नहीं बताया जाता था, बहुत पासिंगली मेंशन किया जाता है. पर भारत में इसका एक पूरा ज्ञान है, पूरा विज्ञान है. भोजन का फॉर इंस्टेंस, जो एक जगह फॉर इंस्टेंस भोजन की बात ले लें अगर हम लोग, तो अगर आप वेस्टर्न कंटेक्स्ट में जाएंगे जिनसे हमारी मेडिसिन टेक्स्ट बुक वगैरह बनी हुई हैं, तो अधिकांश हम क्या सुनते हैं उसके बारे में, कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिंस, कैलोरीज, यही, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. लेकिन माँ हमको बताती हैं कि, और ये हमारी एंशंट साइंस में है, कि भोजन केवल वह नहीं है जो हम मुँह से खा रहे, भोजन वह भी है जो हम लोग अपनी इंद्रियों के माध्यम से ले रहे हैं, और भोजन वो भी है जो हम अपने सूक्ष्म एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम ले रहे हैं. तो माँ कहती हैं बड़े इंटरेस्टिंगली कि A lot depends not just on what you eat, but on the occult atmosphere in which the food is cooked and you are eating. तो अब ये देखिए फर्क पता चलता है, सिंपल सी बात है, यहाँ जो आश्रम में आते हैं कि आप डाइनिंग रूम में वही खाना खाते हैं, वही भोजन आप घर में लाके खाते हैं। अब कन्वीनियंस के लिए लोग करते हैं, गर्म भी करते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो एक अलग बात है, वो टेस्ट की बात है। लेकिन डाइनिंग रूम केवल खाने की बात नहीं है, वहाँ की जो एटमोसफियर है उसमें कोई चीज़ है जो बड़ी अलग है, भिन्न है। नहीं जाना वो एक बात है, लेकिन वो कोई चीज़ है जो पाल्पेबली व्यक्ति फील कर सकता है कि वहाँ के होल एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। तो उसमें फिर किन के साथ हम बैठ के खाते हैं, किस तरह के एनिमेटेड डिस्कशंस होते हैं। हम लोग इवन जब भारतीय साइंस की बात करते हैं तो हम लोग केवल इस पर आ जाते हैं कि ये सात्विक भोजन है, मीट खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, वेगन बनना चाहिए। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इनकम्प्लीट। एक पूरा डायमेंशन है भोजन का, किसने प्रिपेयर किया है, किस भाव से प्रिपेयर किया। इसीलिए माँ के खाने को इतना सर्वोच्च माना गया है, और प्यार से बनाई हुई खिचड़ी बाहर के पकवान से ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इनबिल्ट हमारे अंदर, लेकिन इसको एक फॉर्म देने की आवश्यकता है। केवल डाइट और न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो इस पर एक बहुत कुछ कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अगेन ये समय का अभाव है और इसको इलेबरेट ये आवश्यक है। तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि केवल हम लोग ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, टॉक्स होती हैं, छप जाती हैं, फिर हम लोग भूल जाते हैं। दैट्स नॉट एनफ। अगर हमको सच में सिंसियरली कुछ काम करना है इस फील्ड में तो लोगों को मिलकर ऐसी बुक्स निकालनी चाहिए और फिर उनको और अधिक जगह जानी चाहिए। कई लोग, हम लोग डॉक्टर्स हैं, और ऐसी अगर पुस्तक हो जो हम लोग पेशेंट्स को दे सकें जो बिल्कुल इंडियन पर्सपेक्टिव हो, लाइक डाइट, डाइट के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, वो केवल प्रोटीन, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ही नहीं। ये आपने, ये रिडक्शनिस्ट मॉडल है जहाँ चीज़ों को आपने कंप्लीट रिड्यूस कर दिया उनके बेसिक एलिमेंट्स पर, किंतु कई और भी चीज़ें, तत्व हैं जो, और कई चीज़ें जो नेचुरली, फॉर एग्जाम्पल पानी घड़े में, जो मिट्टी के घड़े में पानी पीना, तो उसमें क्या एडवांटेजेस हैं। मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से हैं, उसके अंदर ऐसे तत्व हैं जो मिलते हैं, ऑटोमेटिकली जल के अंदर आते हैं। अब ये चीज़ें रिसर्च का विषय है, नहीं तो अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं तो वही घूमता रहता है व्हाट्सएप पर कि एवोकेडो खा लो सुबह के समय, शाम को चार ग्लास पानी पी लो। दैट्स ऑल वेरी स्केची एंड वेरी कैजुअल। तो एक भोजन, एक जो कॉमन चीज़ है, उसके ऊपर हमारा समग्र ज्ञान क्या कहता है, वो शायद हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का और उसको समझने की दृष्टि। फॉर एग्जांपल भोजन, ये कहा जाता है और सही है नेचुरली कि मनुष्य को उतना खाना चाहिए जितना वो पचा सके। कैसे पता चलेगा और इसका क्या एडवांटेज है? तो जो खुद पे ऑब्जर्व करे व्यक्ति तो देखता है कि जब ज़्यादा खाता है तो एक नींद सी आती है, तमस भी आता है, क्योंकि उसकी ऊर्जाएँ सीधा पेट के ऊपर चली जाती हैं। तो भोजन खाने की भी कला है कि आप स्वादिष्ट चीज़ खा रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं खा रहे हो, आप ज़बरदस्ती अपने स्वाद को, के सेंस को ख़त्म कर रहे हो, लेकिन आप वो धीरे धीरे जब हम खाते हैं उसका रस लेके, तो शायद हमें, और टाइम लेके खाते हैं तो शायद हमें बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है पाचन शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमको बहुत अधिक भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम धीरे धीरे जब टाइम लेके खाते हैं तो हम कॉन्शियस भी होते हैं। मैंने खुद में ऑब्जर्व किया है कि जल्दबाजी में कई बार, क्योंकि हम लोग की लाइफ इस तरह की बन जाती है, लोगों से बातें करते हुए खाना खाना, जल्दबाजी में खाना, खासकर मैं मेरे व्यक्तिगत उसकी बात बता रहा हूँ मैं, तो आई ऑब्जर्व्ड कि जब मैं जल्दी खाना खाता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ काम चल रहा है कि ये काम करना है, तो उसमें, और जब मैं धीरे धीरे बैठ के आराम से भोजन करता हूँ, हाँ आराम से, ये नहीं कि मैं भोजन के लिए जी रहा हूँ, लेकिन उस समय भी आप स्मरण करते हुए भोजन कर सकते हो, और उसके जो रिजल्ट्स हैं शरीर के ऊपर, पाचन पर, स्वास्थ्य पर, बहुत फर्क होते हैं। आप शायद उसमें से एक एक चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हो। तो एक चीज़ है जो भोजन, जिसके ऊपर एक लाइफस्टाइल का। दूसरा है नींद, कैसे सोया जाए, सोने के पहले हमारी क्या अवस्था होनी चाहिए, क्या एक्टिविटी होना चाहिए, उठने के बाद, ये भी मैंने देखा है, एक तो अलार्म क्लॉक से उठना, ये समझिए आप ब्रेन डेल्टा थीटा में घूम रहा है और अचानक उसको आपने बीटा लेवल पर ले आए, सीधा हाइपरएक्टिव हो गया, उठते ही सोचने लगे। अब ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन पे इम्पैक्ट करती हैं। आमतौर पर डॉक्टर इनकी बात भी नहीं करते, पता नहीं मुझे मानते कि नहीं मानते, अधिकतर शायद डेफिनेटली मानते होंगे, और जिनसे भी मैंने बात की है वो मानते हैं इस बात को कि इट्स नॉट गुड बट इट्स नॉट एडवाइज्ड, और इन चीज़ों पर स्टडी नहीं हुई है कि इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अलार्म क्लॉक से जो लोग उठते हैं उनका विज़ावेज जो अलार्म क्लॉक के बिना उठते हैं, ये किसी ना किसी तरह क्या उनकी ब्रेन फंक्शनिंग पर, नर्वस सिस्टम पे कोई असर डालता है, दिस समथिंग विच वी हैव टू स्टडी। तो एक नींद, कितनी नींद होनी चाहिए, कैसा बेड होना चाहिए, किस तरह की लाइट होनी चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, एक एवरेज व्यक्ति को एक बाय एंड लार्ज एक थोड़ा सा ज्ञान, किसके साथ आप सो रहे हैं, किस एटमोसफियर में सो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आवश्यक है, इसका एक हिस्सा है। सो नींद और भोजन, लाइफस्टाइल की बात हो रही है। हाँ, और तीसरी चीज है जो वर्क रेस्ट बैलेंस, कई लोग इस बैलेंस को नहीं, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लगता है अरे हाँ ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब करते नहीं हैं ना जाने क्यों। तो एक हेल्दी वर्क रेस्ट बैलेंस ये होता है कि आप कॉन्स्टेंटली अगर काम करेंगे तो नर्वस सिस्टम भी स्ट्रेंड होता है, एंड आई हैव सीन इट। इसलिए कई बार मैं कह देता हूँ कि मुझे इतना एक छोटा सा गैप चाहिए, छोटा या थोड़ा बड़ा, क्योंकि नहीं तो अगर काम करना हो तो व्यक्ति कर लेगा, वो एक अलग बात है, आउटपुट की कोई सीमा नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गैप देते हैं तो हमारे सिस्टम को रिजुविनेट करने का अवसर मिल जाता है। ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस चलती रहती है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, तो उसको हमें समय देना चाहिए। एक बहुत पुरानी एक वृत्ति थी भारतवर्ष में तो थी, और आश्रम में ये है पर वो दूसरे कारण से। तो आश्रम में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डिपार्टमेंट, ज़्यादातर डिपार्टमेंट 12 बजे बंद हो जाते हैं, 12 से 12:30 आप भोजन करते हो, वैसे 11:30 से खुल जाता है, फिर अधिकांश डिपार्टमेंट 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद, कुछ एक 3 बजे खुलते हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे भी एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल हेल्दी थॉट है, क्योंकि नहीं तो हम खाना खाया हम भागे, खाना खाया हम भागे, दैट्स नॉट ए गुड थिंग, क्योंकि आप शरीर को ना रेस्ट दे रहे हो, ना पचाने का अवसर दे रहे हो, तो वो सारा जो भोजन है वो आपने सब प्रोटीन सब कुछ ले लिया, लेकिन इट्स नॉट गोइंग द राइट वे इन द बॉडी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कंटिन्यूस वर्क की जगह बीच में रेस्ट की, कम से कम 2 hours, 2-2.5 hours वी शुड इंक्लूड फूड एंड रेस्ट, एंड देन वन बिगिंस टू वर्क। ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट होना चाहिए हमारे जीवन शैली का। और उसी के साथ अगेन मैं आश्रम के लाइफस्टाइल से देखता हूँ कि माने इतना सुंदर लाइफस्टाइल जो बनाया है अपने आप ही आश्रम के, उसमें वो कैसे इनबिल्ट है। तो अधिकतर डिपार्टमेंट्स हम देखते हैं कि 8 बजे खुलेंगे, 8, 8:30 ऐसे, 8 o'clock। एसेंशियल डिपार्टमेंट्स की बात अलग है, पर वहाँ रोटेशन में काम हो रहा है, पर 8 o'clock खुलेंगे, 8 से 12, उसके बाद आप 2 या 3 से 5। तो 5, 5:30 बजे अधिकांश डिपार्टमेंट्स में 5 के बाद फिजिकल एक्टिविटी की बात है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर ये भाव है कि और प्रॉफिट हो कुछ ज़्यादा, बट एक्चुअली अगर आप माता जी का ओरिजिनल तरीका देखें तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि पर्पस यहाँ पे क्या है। पर्पस है कि हम एक सुंदर जीवन, एक बृहत्तर जीवन, एक हायर लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा बॉडीली बेस, माइंड सब सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ। क्योंकि अगर हम 6:37 के बाद देखें तो दैट्स नॉट ए टाइम जब एक्चुअली एक्सरसाइज करना, वो टाइम मेडिटेशन का टाइम होता है जब 6:30 बज रहे होते हैं। तो अगर 5, 5:30 बजे, अगर 5:15 बजे हम लोग बंद करते हैं काम, और मोस्ट ऑफिसेज आर लाइक दैट, बट समाउ पीपल स्ट्रेच इट। कॉरपोरेट सेक्टर का कितना सबसे बड़ा हार्म, जिसको कहते हैं बर्नट आउट सिंड्रोम, इसी कारण है। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में, फिजिकल एक्सरसाइज है, आप अपनी चॉइस है, वॉकिंग है, सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है, आसन है, एनीथिंग, एंड देन अराउंड 6:30 इट्स ए टाइम फॉर मेडिटेशन। आश्रम में 7:30 का समय है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से जा करके थोड़ा स्नान करते हैं, रेडी होते हैं, देन यू सिट फॉर मेडिटेशन। बहुत सुंदर एक क्वाइट एटमोसफियर होता है, और उसमें मेडिटेशन के बाद में पीपल गो फॉर द डिनर, और डिनर के बाद यू हैव टाइम टू रीड समथिंग, टू रिलैक्स, आप साढ़े आठ नौ बजे तक डिनर के बाद आ गए, थोड़ा आपने कुछ पढ़ा, कुछ लोग जाते हैं आश्रम, बट इवन इफ यू गो फॉर अ शॉर्ट मेडिटेशन देन यू रीड समथिंग नाइस हेल्दी, लिसन टू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, वॉच समथिंग विच इज़ नाइस, उसके बाद धीरे धीरे यू स्लिप्स इन टू स्लीप। तो ये बहुत सुंदर एक प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि ना केवल टेक्स्ट बुक्स में, लाइफस्टाइल के ऊपर इंडियन पर्सपेक्टिव से एंड ऑफ कोर्स मदर एंड शोबिंदो पर्सपेक्टिव लिखा जाना चाहिए, शायद एक पूरी बुक आनी चाहिए ऑन लाइफस्टाइल, जिसमें खाने पर, निद्रा पर, वर्क पर, एक्सरसाइज पर, इन सब पर क्या चीज़ें माने कही हैं, और इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखा जाना चाहिए। और जैसे कि आजकल हॉस्पिटल्स में डाइट का एक डिपार्टमेंट कई हॉस्पिटल्स रखते हैं, लेकिन वो बहुत ही बहुत क्या कहें, अगेन वेस्टर्न मेडिसिन, एक डायबिटिक है या कोई जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो डाइटिशियन के पास जाता है, वो आपको सीधा लिस्ट पकड़ा देता है, ये खाओ सुबह में, ये खाओ दोपहर को, वो एकदम डिस्कनेक्टेड है रियल लाइफ से। तो केवल डाइट का डिपार्टमेंट रखना ये काफ़ी नहीं है, ये तो केवल हम धोखा दे रहे हैं खुद को कि हमने कुछ रखा, होना चाहिए लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट्स। एक बार मैंने इस पर पूरा एक प्रपोजल बना करके आश्रम में भी दिया था कि अगर हम लाइफस्टाइल क्लिनिक्स रखें तो टू टेक अ लिटिल, नॉट इन ए पॉलिटिकल सेंस, पर जैसे बात हो रही थी एक पार्टी मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है, तो जरूरी है कि हम लाइफस्टाइल क्लिनिक्स खोलें। तो लाइफस्टाइल क्लिनिक्स अगर हम खोलेंगे तो हो सकता है कि हमको आवश्यकता नहीं रहेगी, मेडिसिन का कॉस्ट और इलनेस का जो कॉस्ट है बहुत कम हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि नेशनल प्लानिंग में भी ये चलता है कि भाई कितने डॉक्टर्स पर पेशेंट्स, और कितने और हम हॉस्पिटल बनाएं जिसमें कितने डॉक्टर्स को ट्रेन करें। आई थिंक दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ट्रेन तो ऐसे होना चाहिए कि जो कुछ ही डॉक्टर्स हैं वो दे आर कैपेबल ऑफ इंस्टिलिंग द राइट काइंड ऑफ अप्रोच इन अ एरिया लोकेलिटी, ताकि लोग इंस्पायर्ड हों उनसे, वो लाइफस्टाइल उनकी बदले, चेंज हो, और बीमारी की आवश्यकता कम हो, डॉक्टर्स की आवश्यकता कम हो, दवाइयों की आवश्यकता कम हो। वी आर मूविंग इन ए वेरी डिफरेंट डायरेक्शन एज ऑफ नाउ, कितने डॉक्टर्स, कितने हॉस्पिटल, कितनी दवाइयाँ, दैट्स नॉट द वे। द वे शुड बी लेस एंड लेस डॉक्टर्स। अभी आश्रम के कंटेक्स्ट में मैं देखता हूँ जब स्पेशलिस्ट आते हैं बाहर से तो बहुत भीड़ होती है, हड्डी के डॉक्टर आते हैं या कोई भी आते हैं, तो मैं देखता हूँ अचानक बहुत लोग आ जाते हैं, अंदर अंदर मुझे दुख होता है, मुझे लगता है कि होना ये चाहिए कि यहाँ तो सबसे खुशी की बात यह हो कि जब बहुत कम मरीज हूँ, मरीजों की जरूरत ही नहीं हो, मैं तो प्रे करता हूँ माँ से, माँ आश्रम में रोग मुक्त हो, दैट वुड बी समथिंग। अब वो कैसे, उसके कई तरीके हैं। मुझे एक सजेशन ये है कि जब डॉक्टर्स आते हैं सीधा अपने क्लिनिक में, जो भी है कि इंडिविजुअली प्रे किया नहीं किया, ये हर एक की अपनी अपनी बात है, पर एक कलेक्टिव ग्रुप मीटिंग जो हम लोग रखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, एक कलेक्टिव प्रेयर होनी चाहिए। मुझे जहाँ तक मालूम है एक क्रिश्चियन कॉलेज में ऐसा होता भी है, एंड पीपल शुड कम टुगेदर। एक में नहीं, मैं दो को तो जानता हूँ निश्चित रूप से, विच इज़ वेरी नाइस थिंग, और स्ट्रेंजर की दे प्रैक्टिस इट, वो बैठ करके प्रे करते हैं, ऑफकोर्स दे मेड इट वे इट्स नॉट कंपल्सरी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, पर पता नहीं क्यों भारतीय जो सनातन धर्म से प्रेरित है उनमें ये क्यों नहीं है। ये होना ये चाहिए कि हम कोई भी मेडिकल कॉलेज है, वी शुड हैव मॉर्निंग के समय, कंपल्सरी मत रखिए, पर जो डॉक्टर्स कम से कम हेड ऑफ डिपार्टमेंट दे कैन कम, दे सिट टुगेदर एंड प्रे, कलेक्टिव एस्पिरेशन, मदर सेज कि इट कैन चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ, एंड प्रे फॉर वॉट, नॉट ओनली फॉर द वेल बींग ऑफ द पेशेंट्स, देयर हेल्थ हीलिंग, बट ऑल्सो सो दैट पीपल बिकम फ्री ऑफ डिजीजेस। सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। तो दिस शुड बी अ कॉन्स्टेंट ऑन गोइंग प्रोसेस। रोज एक मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में सिस्टर्स के साथ भी ये होना चाहिए कि जब वो आती हैं डिपार्टमेंट में, वो सीधा अपने अपने नर्सिंग स्टेशन पे चली जाती हैं, तो उनको बैठ करके या जिस भी अवस्था, ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट, एक दिल से प्रार्थना करनी चाहिए कि मे एवरीथिंग बी फाइन, मे ऑल बी हेल्दी, मे ऑल बी फ्री ऑफ डिजीजेज। ये हमको लगता है कि इनका कोई इफेक्ट होता है, पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आई हैव सीन कि इसमें बहुत बहुत शक्ति है. अब इसको स्टडी करना वो एक अलग बात है, बट मैंने ये देखा है कि अगर कुछ पेशेंट्स हैं आपके अंडर, मान लीजिए आप कोई यूनिट देख रहे हैं जिसको हॉस्पिटल की, जिसमें 20 है 30 है 40 पेशेंट आपके अंडर है, तो एक है कि हम सबसे बात करके दवाइयाँ, और बड़ा मज़ा आता है उसमें डॉक्टर को टिपिकली, कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है, सिस्टर चल रही हैं और पूरा दिमाग को लगा रहा है. पर दूसरा एक तरीका ये है जिसमें आप इलनेस सेंटर्ड नहीं, हेल्थ सेंटर्ड अप्रोच होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप बीमारी पर फोकस नहीं करते हैं. हो सकता है मरीज को अजीब लगे, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच, आई वुड से एक साधना छिपी होती है, और उसका प्रभाव होता है. और फिर प्रत्येक दिन सुबह में और रात को राउंड्स लेने के बाद, या जब आप पैकअप कर रहे हैं जा रहे हैं वापस, तो कुछ समय बैठ करके वो सारे मरीज हैं यहाँ पर हमारे आश्रम कॉन्टेक्स्ट में, सोने के पहले जा करके 2 मिनट की भी प्रार्थना कि माँ सबका ध्यान रखना, मे योर प्रोटेक्शन एंड ग्रेस बी विद ऑल. आई हैव सीन ये छोटी सी चीज़ इतना फर्क करती है, जबकि वो कोई समय नहीं लगता उसमें. मुझे इतना आश्चर्य होता है कि हाउ इट वर्क्स, एंड आई हैव सीन इट वर्क, आई हैव रीजंस टू बिलीव. वो एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा. इवन जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो मैं यही प्रे करके जाता हूँ कि सबकी सुरक्षा वास्तव में तो आपके हाथ में, यू आर द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग, बट स्पेशल केयर प्रोटेक्ट. कोई पर्टिकुलर पेशेंट अगर ज़्यादा खराब है आपको लग रहा है, तो उसके बारे में आप एक एक्स्ट्रा, जैसे आप सुप्रीम हीलर को, हम लोग रिपोर्ट करते हैं ना जब नॉर्मल एक सेटअप में, मेडिकल सेटअप में, यूनिट हेड को, हम लोगों का सुप्रीम हेड डिवाइन, तो वी गो एंड रिपोर्ट. स्पेशली एक समय मैंने एक जर्नल, एक रजिस्टर शुरू किया था, शुरू में किया था, बाहर भी करता था मैं जब एयरफोर्स में था, और आश्रम आने के बाद भी किया. अब उसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दिया. मैं एक्चुअली लिखता था, जैसे पेशेंट का रजिस्टर होता है तो आपने रजिस्टर में लिखा, अब वो सब मैं नहीं करता था, वो कोई और करता था कि क्या बीमारी है क्या है. बट एक रजिस्टर होता है जो बस मुझे पता होता था, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर पेशेंट जिसको मुझे लगता था कि थोड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं लिख करके वेरी ब्रीफली आई यूज टू कम्युनिकेट टू द मदर एंड प्रे टू हर दैट ये जो है पेशेंट, इसका आप प्लीज़ ध्यान रख लो. एंड आई हैव सीन दिस स्मॉल लिटिल थिंग्स, आई डोंट नो स्मॉल कहें या क्या कहें, एक्चुअली आई हैव सीन, नॉट ऑफकोर्स मैंने इसको बहुत फील्ड्स में ट्राई किया है. एक सेंटर है जिसमें दूध नहीं देती थी गाय सफिशेंटली, तो सेंटर में धन की कमी थी, तो पूरा लिख करके मदर दिस इज़ द प्रॉब्लम. और ये सीखा कहाँ से, आश्रम में यही होता था. आप देखें तो डिपार्टमेंट के हेड्स क्या करते थे, डिपार्टमेंट के हेड द्युमन भाई का देखिए, सारी प्रॉब्लम्स जो हो रहा है नहीं हो रहा है सब माँ को बता रहे हैं. तो ये एक एस्पेक्ट है जो हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए. हम सारी टेक्निक्स की बात करते हैं, ऐसे मेडिटेट कर लो, ऐसे इन्वोक कर लो, ऐसे इमेज कर लो, ये सब ठीक है, लेकिन सुपर साइंस क्या है. माइक जय कहती हैं, बट द सुप्रीम साइंस, शी हैज यूज द वर्ड सुप्रीम साइंस, इज टू लीव अवरसेल्फ्स एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन. ये एग्जैक्ट प्रेयर आई थिंक मार्च 17, 1913 की है, या 14 की है, जब माँ कहती सुप्रीम साइंस क्या है, कि अपने आप को आप भगवान के हाथ में सौंप देते हो और कहते हो कि वेदर दाउ चूजेस फॉर मी लाइफ और डेथ, जीवन हो या स्वस्थ हो या मृत्यु. आई थिंक ये सीखने की ज़रूरत है, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू ट्रांसमिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तब तक नहीं कह सकते कन्विक्शन के साथ अनलेस हम लोगों ने अपने जीवन में इसको उतारने की चेष्टा नहीं की हो, क्योंकि हम वही कन्विंसिंगली कह सकते हैं जो हमने प्रयास किया हो. इट लुक्स सो स्मॉल. और मैंने शेयरविंद ने जब नागा साधु की एक बात करते कि उसने बारिन का माउंटेन फीवर क्योर किया था, काट करके पानी को दिया था उन्होंने, तो ये बहुत सरल चीज़ें हैं लेकिन बहुत प्रेशियस जेम्स हैं हमारे अपने शास्त्र के, अपने आध्यात्मिक विरासत है जिसको हमने खो दिया और खोते अभी भी खो रहे हैं. इवन इंटीग्रल हेल्थ, हम ये सब बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, अंत में हम किसी मेडिटेशन की टेक्निक या इमेजरी की टेक्निक, वी एंड अप विद दैट, दैट्स नॉट इनफ. डिवाइन इज अ रियल एंटिटी. हमने उनको दूर कर दिया अपने आप से, अपने सिस्टम से दूर कर दिया कि तुम्हारी, तुम बस पर्सनल हो, मेरे अंदर हो. पर वी डोंट ब्रिंग द डिवाइन इनटू द वर्ल्ड इन रियल लाइफ, इन रियल प्रैक्टिस, इन एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स. तो ये कुछ बातें हैं जो लाइफस्टाइल में सुबह उठने से लेकर शाम तक सिंपल थिंग कि हम बोलें कैसे. लोग ब्रीदिंग पर इतना ध्यान देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है ब्रीदिंग पर ध्यान देना, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट बीट. हार्ट बीट पर हम क्यों नहीं बोलते कि भाई हार्ट, क्योंकि आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते आउटवर्डली. आप ब्रेथ को करें, लेकिन ज़्यादा इंटीग्रल फंडामेंटल कौन है? हार्ट बीट है. हार्ट बीट रुकती है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति मृत है. हार्ट बीट का सीधा कनेक्शन होता है हमारी इनर स्टेट से. आप क्रोध में हैं तो आपकी हार्ट बीट गड़बड़ हो जाती है, भय में है तो हार्ट बीट एक प्रकार की होती है, शांत हैं तो हार्ट बीट अलग होती है. तो हार्ट बीट का एक पूरा विज्ञान है कि हम अपनी हार्ट बीट को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं. टू एंड कोर्स देर इज अ हायर काइंड ऑफ नियंत्रण ऑल्सो, बट अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे. केवल एक शांत रहना, हमारी वाणी में शांति हो, मन में शांति हो, सिंपल उपाय हैं. हमारी भाव में शांति हो, किसी के लिए दुर्भाव ना हो, हमारे अंदर कोई ऐसा विचार ना आए जो किसी को हार्म करने की चेष्टा हो, अहंकार से भरा हुआ हो. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मन पर, प्राण पर. हमारे संकल्प सधे हुए हों, स्टेडीनेस हो हमारे अंदर, एक स्थिरता हो. और अंत में एक और चीज़ जो मुझे लगती है जो इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल में, जो हमको सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, वो है वेस्टेज. बहुत हम ऊर्जा का अपव्यय करते हैं. और दो रूट हैं, बल्कि मैं कहूँगा दो एंड है. एक है सेक्सुअलिटी, जो ऑफ कोर्स पर्टिकुलरली यंगस्टर्स, बहुत से लोग बीमार पड़ते रहते हैं. और शेरविंद ने एक जगह बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से एक बात लिखी कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ता है, इसको बोलो थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करे, ठीक हो जाएगा. एंड आई रियलाइज कि इट इज रियली, इट मेक्स अ डिफरेंस टू सेंस ऑफ यूथफुलनेस. अब वो और बात है कि फाइनल रेमेडी अल्टीमेट नहीं है, लेकिन इट्स ए ग्रेट हेल्प, इट हेल्प्स. अब आप किसी भी मॉडर्न वेस्टर्न साइंस के उसको पढ़ो तो वो तो नहीं मानते हैं. सेक्सुअलिटी इज ए नॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया है इस चीज को. वास्तव में देव नॉट स्टडीड, दे प्रिज्यूम, बिकॉज नोबडी इज डन अ प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी. कि आसान भी नहीं है, बिकॉज हु विल एग्री एंड हाउ मेनी पीपल विल रियली सिंसियरली डू इट. बट वन रीजन ऑफ अ बेटर हेल्थ इन सर्टेन प्लेसेज इज और सर्टेन पीपल इज अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट चीज आप इनहेरिट करते हो, इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य. सो ये चीज हमारे सिस्टम में आनी चाहिए. इसका इंपॉर्टेंस करें लोग ना करें ये उनके ऊपर है, बट पीपल शुड नो. ये नहीं कि डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, ये इम्पॉसिबल आइडियल देंगे तो दैट्स एन आइडियल मेंट फॉर अ वेरी एडवांस्ड योगी. बट यू कैन हैव अ रेगुलेटेड सेक्सुअलिटी एंड देयर इज अ प्रोसेस ऑफ दैट सेक्सुअलिटी. तो ये सेक्सुअल टीचिंग इन द डीपर सेंस, नॉट इन द सुपरफिशियल सेंस, उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वो पार्ट है हमारे जीवन का. फूड, सेक्स, स्लीप, दे आर ऑल पार्ट ऑफ, वेरी मच वी डोंट इवन एड्रेस इट. उसका रिलेशन क्या है हेल्थ के साथ, तो ये एक कंजर्विंग एनर्जी. और दूसरा एंड जिससे हम एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं वो स्पीच. और मेरे लिए तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि स्पीच एक्सटर्नलाइज करते हैं हम तो इट ड्रेन्स योर एनर्जी. अब फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर मेनी अदर्स इट्स मदर्स वर्क. सो अब यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, शी टेक्स केयर ऑफ इट, बट समटाइम्स इट एक्चुअली ड्रेन्स, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है. आप स्टार्ट कर रहे हो, अंदर में कनेक्टेड भी हो, सब हो, लेकिन फिर भी आपकी जो एनर्जी है वो बाहर जा रही है एक्सटर्नलाइज, क्योंकि वो ये जो हमारा थ्रोट है वो एक्सटर्नलाइजिंग कॉन्शियसनेस है. इट्स द वाइटल विच इज एक्सटर्नलाइजिंग इट सेल्फ, मरुत्स है. तो अब माँ के काम के लिए पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक डॉक्टर को जो भी कहना है वो तो ही हैज टू डू, बट बाकी समय बहुत सारे जो चिट चैट होते हैं, हा हा ही ठट्टा, उसमें तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज, वी कैन स्टॉप इट एक्चुअली. एनिमेटेड डिस्कशंस, एंजॉय इट. इफ यू फील समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन, यू कैन टेक अ लिटिल जॉय इन इट. humorously. पर उसमें एक्टिवली एंगेज करना इज ए बिग ड्रेन टू स्पीच. एंड फाइनली जो दिमाग की बात हो रही थी कि दिमाग एक घर में लगता है लेकिन उसका जो दिमकी है, जो उसकी क्वीन, वो कहीं और रहती है. तो बहुत बार हम किस तरह की कंपनी में हैं इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारी ऊर्जा का शेयर करते हैं, ऐसे लोग हैं जो वर्धन करते हैं हमारे. अब आप नेबरहुड, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बदल सकते हो, यू कांट चेंज देम, बट यू कैन डेफिनेटली अप्लाई काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, इनर प्रोटेक्शन. क्योंकि आप जहाँ रहते हो, जिस परिवेश में रहते हो, उसका असर होता है कलेक्टिव का, एटमॉस्फियर का, किन लोगों के साथ उठना बैठना है. इसीलिए प्लेसेस लाइक मैरिज पार्टीज एंड ऑल, दे आर नॉट हेल्दी प्लेसेस, इवन मार्केट प्लेसेस. इसलिए नहीं कि वहाँ जाने से आपको बीमार होकर लौटोगे, ऐसा नहीं है. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी मैंने इस पर टॉक भी दी है, संगम में गया, अभी करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं. आपने सुना कोरोना आउटब्रेक? मुझे दो तीन लोग दिखे मास्क पहने हुए, नोबडी वाज वेयरिंग मास्क ऑल थ्रू. अब ये क्यों है? क्योंकि वो ऊर्जा अलग है, दैट्स अ डिफरेंट ऊर्जा ऑल टुगेदर. भय नहीं है, श्रद्धा है. वहां तो ये भाव से आप जा रहे हो कि आपका जो बीमारी वो भी खत्म हो जाएगी. पानी में नहा रहे, ये नहीं कि हाइजीनिक है कि नहीं है, बहुत साफ था पानी, लेकिन फिर भी नेचुरली इतने लोग नहा रहे हैं, उसमें और भी बहुत कुछ होता होगा पानी में. मैंने तो उस पानी को पिया भी, नहाया नहीं बल्कि छीटा मार के पिया भी. क्यों पिया? मैंने कहा अमृत तो पिया जाता है, सिर पर थोड़ी डाल है. और मैंने पी के बड़े कॉन्शियसली कि लेट मी सी डज इट अफेक्ट मी इन एनी वे, इट डजंट अफेक्ट यू, आई एम नॉट सेइंग उसमें अमृत है कि नहीं. लेकिन पॉइंट है कि हमारी इनर स्टेट और जो कलेक्टिव का एटमॉस्फियर है, वहां इतनी भीड़ है, लेकिन अब तक तो जहां तक मैं जानता हूं कोई कोरोना का केस या आउटब्रेक नहीं हुआ है. और बाकी ऐसी जगह हैं, मार्केट्स हैं, बड़े बड़े हाइजीनिक सिटीज हैं दुनिया में जिसमें लोग बीमार पड़े हैं. तो ये बस कुछ एक बिंदु हैं जिनको मैं टच करना चाहता था. एंड एज आई सेड, इट शुड नॉट एंड विद जस्ट अ टॉक एंड सीरीज ऑफ टॉक्स और ए सेमिनार, दैट डजंट मेक मच मीनिंग. हम लोग छाप देते हैं, कोई नहीं पढ़ता है, ट्रस्ट मी नोबडी रीड्स, इट्स एक्चुअली वेस्ट ऑफ पेपर. ई मैगजीन आनी चाहिए. मोर इम्पॉर्टेंट इज छापना वो चाहिए जो आप एक कंसोलिडेट करके मेक ए हैंडबुक ऑफ लाइफ स्टाइल, स्टार्ट अ लाइफ स्टाइल क्लिनिक इन वॉट एवर हॉस्पिटल या डिपार्टमेंट यू हैव द राइट टू स्टार्ट इट. देर आर प्लेसेज, आई नो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बिजलानी ने इंटीग्रल हेल्थ सेंटर बनाया था, अभी भी चल रहा है. तो वी कैन स्टार्ट दैट. ये कंक्रीट स्टेप्स हैं. सेमिनार्स आर ओके, बट बहुत हो गए सेमिनार्स, अब हमको रियल एक्शन की जरूरत है. जय मां वंदे मातरम.